प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से लिया गया है, जहां पर अध्याय 13 में येसु अपने अध्याय 16 में येसु अपने शिष्यों से प्रश्न करते हैं। अध्याय 16 संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 16 वाक्य 13 से येसु अपने शिष्यों से प्रश्न करते हैं, मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? और वे लोग उत्तर देते हैं, योहन बत्तिस्ता कुछ कहते हैं, एलियस और कुछ लोग कहते हैं यरमियस अथवा नबियों में से एक। इस पर ईसा ने कहा, और तुम लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? शिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवन ईश्वर के पुत्र है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, शिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। प्रभु येसु अपने शिष्यों से प्रश्न करते हैं, मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? और शिष्यों ने उत्तर दिया, लोग तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम यूहन्न बपतिस्ता हो, कुछ लोग कहते हैं तुम एलिया हो, कुछ लोग कहते हैं तुम यरमिया हो या नबियों में से कोई। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है प्रभु के विषय में, लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हम जानते हैं कि एलिया बहुत बड़े नबी थे, इनके विषय में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 में लिखा गया है, एलिया अग्नि की तरह प्रकट हुए, एलिया अग्नि की तरह प्रकट हुए। हम जानते हैं अग्नि ईश्वर का ही प्रतीक है, ईश्वर अग्नि के रूप में आते हैं, आग के रूप में आते हैं, और जब प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतरते हैं अग्नि के रूप में उतरते हैं, आग के जीवों के रूप में उतरते हैं। और एलिया नबी के बारे में कहा गया है, एलिया अग्नि की तरह प्रकट हुए, एलिया अग्नि की तरह। इससे अच्छा क्या बोल सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में? और वाक्य 3 में कहा गया है, उन्होंने प्रभु के वचन को वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। वाक्य 5, अपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अथोलोक से वापस बुलाया। 6, आपने राजाओं का सर्वनाश किया, प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया और सहज ही उनका बल तोड़ दिया। अध्याय 48 के वाक्य 7, आपने सीनाई पर्वत पर दोषारोपण और होरेब पर्वत पर दंडाज्ञा सुनी। 8, आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और अपने अत्याचारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे। तो एलिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है। याकूब के पत्र अध्याय 5 वाक्य 17-18 में ये लिखा गया है, एलियस हमारी ही तरह एक निरे मनुष्य थे, उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी न बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। एलिया की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति थी, एलिया की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति थी। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में कहा गया है कि एलिया ने बाल देव के 450 पुरोहितों को एक बलिदान के जरिए पराजित कर दिया। बाल देव के 450 पुरोहितों को उन्होंने पराजित किया। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में कहा गया है ईश्वर ने कर्मल पर्वत पर नबी एलियस को मंद समीर में आने हल्की हवा में दर्शन दिया। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 1-11 में कहा गया है कि एलिया के शरीर को ईश्वर ने इस धरती में गलने नहीं दिया, बल्कि स्वर्ग से अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ को भेजकर ईश्वर उनको स्वर्ग में उठा लेते हैं। इतने महान व्यक्ति है एलिया। तो जब लोग कहते हैं आप एलिया है यीशु के बारे में, तो कितनी अच्छी बातें कहते हैं। एलिया बहुत बड़े नबी थे, वो स्वयं आग के समान थे। और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 8-9 में नबी यिर्मयाह के बारे में कहा गया है। 49 वाक्य 8-9, यिर्मयाह के कारण उसकी सड़कें उजाड़ी, क्योंकि उन्होंने उन पर अत्याचार किया, यद्यपि माता के गर्भ में ही उनका अभिषेक नबी के रूप में हुआ। नबी यिर्मयाह के बारे में कहा गया है उनका अभिषेक उनके माता के गर्भ में ही ईश्वर ने किया। किसी दूसरे नबी के बारे में ऐसा कहा नहीं गया है, उनके घर माता के गर्भ में ही उनका अभिषेक ईश्वर ने किया। कितना बड़ा नबी है। और जिससे उन्हें उखाड़ने गिराने एवं नष्ट करने का और इसके बाद निर्माण करने और रोपने का अधिकार मिला था, और उनको उखाड़ने गिराने नष्ट करने और फिर से निर्माण करने का रोपने का अधिकार दिया गया। नबी यिर्मयाह के बारे में यह भी कहा गया था कि जब इसराइली लोग बंदी बन के जाते हैं, तब यिर्मयाह नबी विधान की मंजूषा को लेकर गुफा में छिपा देते हैं और लोग उनके पीछे पड़ते हैं ये पता करने के लिए नबी यिर्मयाह ये विधान की मंजूषा लेकर कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता। तो लोग सोचते थे नबी यिर्मयाह भी वापस आएंगे। तो अगर प्रभु के विषय में ये कहा जाता है कि प्रभु नबी यिर्मयाह है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यिर्मयाह बहुत बड़े नबी थे। तीसरी बात है यूहन्न बपतिस्मा की। प्रभु के विषय में लोग कहते हैं ये यूहन्न बपतिस्मा है। यूहन्न बपतिस्मा के बारे में कहा गया है संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 में कि जब उनके पिता जकरियस मंदिर में धूप चढ़ा रहे थे, उस समय पर ईश्वर के दूत ने उनको यह संदेश दिया कि आपका एक पुत्र जन्म होगा जो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमें इस पर ध्यान देना है, क्योंकि मंदिर में सब लोग बाहर खड़े हैं प्रार्थना करते हुए, और पुरोहित जकरियस अंदर प्रवेश करके ईश्वर के सामने धूप चढ़ाते हैं। उस समय ईश्वर संत यूहन्न बपतिस्मा के जन्म का संदेश देते हैं। कितने महान व्यक्ति होंगे, तभी तो धूप चढ़ाते समय उनको उनके पिता को यह संदेश मिलता है कि एक बच्चा जन्म होगा जो प्रभु का अग्रदूत बनेगा, और वे प्रभु के अग्रदूत बनते हैं। और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 11 में प्रभु स्वयं कहते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं मनुष्यों में यूहन्न बपतिस्मा से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, मनुष्यों में योहन बत्तिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। कितने महान व्यक्ति हैं, कितने महान व्यक्ति हैं। इस प्रकार तीन महान व्यक्तियों को हमारे सामने प्रभु प्रभु का वचन रखता है, एलियस, यरमियाह और योहन बत्तिस्ता। लेकिन हमें एक बात पर ध्यान देना है, ये तीनों व्यक्ति ऐसे थे जिनके साथ ईश्वर थे, बल्कि यीशु स्वयं ईश्वर है। ये जो तीनों व्यक्ति जिनके बारे में सुसमाचार में कहा गया है कि लोग प्रभु यीशु के बारे में कहते हैं, योहन बपतिस्ता है, ये एलियस है, यरमियाह है, ये तीनों व्यक्ति एलिया, यरमियाह और योहन बपतिस्ता ऐसे लोग थे जिनके साथ ईश्वर थे, लेकिन वे स्वयं ईश्वर नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं ईश्वर है। अगर नबी एलियाह ने बालदेव के 450 पुरोहितों को एक सांड के बलिदान से हराया, तो प्रभु यीशु ने शैतान की ताकत को अपने शरीर और रक्त के बलिदान से हराया। इतना फर्क है। नबी एलियाह ने बालदेव के 450 पुरोहितों को एक सांड के बलिदान से हराया, तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर शैतान की ताकत को अपने शरीर और रक्त की कुर्बानी देकर हराया। संत लुकास के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 77 में कहा गया है कि संत योहन बपतिस्ता प्रभु के अग्रदूत थे, उनके पिता के मुंह से ही ये निकलता है, प्रभु के अग्रदूत, यानी प्रभु के आगमन का खबर पहुंचाने वाला, प्रभु के आगमन के लिए रास्ता तैयार करने वाला। तो प्रभु महान ही है, उनसे महान है। और इसलिए लूकास का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में संत योहन स्वयं कहते हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूँ, मैं उनके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कई लोग सोचते हैं कि प्रभु महान है, लेकिन प्रभु को जो जगह देना चाहिए वो देना चाहिए। प्रभु ईश्वरों में एक ईश्वर नहीं है, प्रभु देव देवताओं में एक देवता नहीं है, प्रभु स्वयं ईश्वर है, जिनके सामने बराबरी करने वाला कोई नहीं होता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में जो ईश्वर को हम प्रस्तुत करते हैं, उनके सामने बराबरी करने वाला कोई नहीं। मूसा हो, एलिया हो, यरमियाह हो, ये सब ऐसे लोग थे जिनके साथ ईश्वर रहते थे, वे स्वयं ईश्वर नहीं थे। हमें भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपना बेटा भी क्यों ना हो, अपनी बेटी भी क्यों ना हो, अपना पति भी क्यों ना हो, पत्नी भी क्यों ना हो, अपने माता पिता भी क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को ईश्वर की जगह नहीं देना चाहिए। ईश्वर ईश्वर होते हैं। इसीलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12 में प्रभु का वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिनके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ईसा नाम की बराबरी करने वाला कोई दूसरा नाम नहीं है। ईसा नाम के बराबरी करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नाम नहीं है। तो आइए भाई और बहनों, इस मिसा बलिदान में परम पावन ईश्वर से विनती करें कि ईश्वर हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान ले, हम ईश्वर को सबसे प्रथम स्थान दे हमारे जीवन में, हम यीशु को इतना आदर दे जितना हम किसी दूसरे को नहीं देते। हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति ना आए, ऐसा कोई वस्तु ना आए जिसको हम ईश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं, ईश्वर से ज़्यादा चाहते हैं, ईश्वर से ज़्यादा आदर देते हैं।